Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address company-specific queries. And you can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106, and do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. My name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन. आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं. श्रोताओं, आज शनिवार है. आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर है 2331-4444, 2331-0481 और 2371-1106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या किसी कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, श्रोताओं की तरफ से, हमारे और निशित की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची, धन्यवाद निशित, और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जाने क्या है सुर्खियां.
गवर्नमेंट अश्योर्स अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई अक्रॉस द कंट्री, सेज टू इंडियन फ्लैग वेसल्स हैव क्रॉस्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टुडे. Services exports crossed $348 billion during April-January period of the current fiscal, and domestic benchmark indices register the steepest weekly fall in nearly 4 years. Sensex and Nifty slump over 5%.
सरकार ने पूरे देश में निर्बाध ईंधन आपूर्ति का भरोसा दिलाया. कहा, आज दो भारतीय जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जनवरी अवधि में सेवा निर्यात 348 अरब अमरीकी डॉलर के ऊपर पहुंचा, और भारतीय शेयर बाजार ने बीते 4 साल के अंतराल में इस सप्ताह सबसे अधिक साप्ताहिक गिरावट दर्ज की. सेंसेक्स और निफ्टी में 5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. The Ministry of Petroleum and Natural Gas today said that petrol and diesel are adequately available at retail outlets across the country. In a social media post, the ministry noted it had come to its notice that petrol was being taken in a loose container at a retail outlet in Tamil Nadu. It advised consumers not to take or store fuel in loose or inappropriate containers, as it poses serious safety risks. The minister said the concerned petrol pump has been suspended and appropriate action has been taken. The ministry also instructed all retail outlets and dealers to strictly follow safety guidelines while dispensing fuel and warned that any violation would invite strict action. In an interministerial media briefing, Special Secretary of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Rajesh Kumar Sinha, also announced that two Indian flagged vessels, Shivalik and Nanda Devi, have crossed the Strait of Hormuz safely early morning today. He noted that these vessels are carrying 92,700 metric tons of LPG. Mr. Sinha further informed that the vessels will arrive at Mundra and Kandla port on the 16th and 17th of this month. On LPG supply situation, gas distribution agencies Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL and Bharat Petroleum have assured customers about availability of cylinders across the country.
Nishit, साथ ही हमारे मुंबई से निलेश जुड़ चुके हैं. निलेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
Thank you very much. Looking at the current market situation, instead of going into individual stocks, specific investments, is it advisable to go for a Nifty fund or something like this? Because Nifty has fallen significantly during past month or so. Would like to know about this.
All right, Nilesh, you see, we should not forget that Nifty comprises of 50 top stocks. So if Nifty has gone down, obviously those 50 stocks must have gone down. So I think that depends on your preference as to what you want, because normally there are people who prefer indices and there are people who prefer stocks. So I would suggest keep that as an option. It's not a bad option. What you've said is not bad at all. But you can also look for some bargain hunts in the large caps, maybe some in the mid caps also, because some of them, because here we don't name stocks, I think we follow that protocol of not naming the stocks. But when you find that the PEs of lot of stocks, this is for all the listeners, Prachi and Nishit, that the PEs in India, PE used to be 25 at one point of time. Now some of the PEs have come down even below 20. So we call that as a very attractive buy. So I think you can look for PEs and book values of stocks which have become attractive now. You need to do a little bit of fundamental research, because when a market falls because of a news flow, because of an extraordinary event happening around the world, so obviously, you know, the correction is deep. And this deep correction gives you an opportunity to enter. If you're noticing, a very interesting point I would like to mention here, our DIIs, I call them Desi Boys, you know, our mutual funds, you know, the domestic institutional investors, they have been doing heavy buying. In fact, last trading session, they bought about 7,000 crores on a particular day. So which means that, and they've got some top class research analysts with them. So you can see that this is a good opportunity for people to pick up for long term. So Nilesh, my advice is do in smaller lots and look for bargain hunts. I'm not taking you away from your Nifty strategy. Maybe you can balance the two out between your funds.
Right. Next caller is Amit from Delhi. Amit.
Namaskar, Padiko, sir. Namaskar. Sir, Kohli, sir. Namaskar, sir.
Namaskar, sir.
Mera, sir, prashna ye hai, thoda sa do hi sawal hai, sir, ki abhi haliya dino mein jo US aur Iran ka chal raha hai, sir, kya koi international country, Rus, like China, ya koi bhi G7 वगैरह कोई मीडिएटर आने वाला है बातचीत के लिए, या अभी लंबा चलेगा? दूसरी चीज सर, कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 3-3 महीने साल साल भर का होता है, तो ये $60 से जो $100 $120 जो ब्रेंट क्रूड का रेट आया है, तो इन 15 दिनों में हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना किया था, हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने के लिए किया था, तो हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट पुरानी हो गई। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में इतना ज्यादा प्रेशर आखिर है क्यों सर? पर्टिकुलर एक हफ्ते में 20% की गिरावट है सर, क्या सही रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी बाय करने के लिए इस टाइम पे? धन्यवाद सर।
चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, आपका पहला क्वेश्चन तो बहुत जनरल है। अब दो लोग लड़ रहे हो, बीच में कोई बचाने आएगा नहीं आ जाएगा, ये तो उस बीच वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात उन दो लोगों पर डिपेंड करता है जो लड़ रहे हैं। यहां तो दो नहीं तीन है, एक तरफ अमेरिका और इसराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। देखिए, मीडिएशन होगी या नहीं होगी, ये तो निर्भर करेगा ईरान का क्या स्टैंड रहता है और क्या ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब को मीडिएशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हम तो सब उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी समाप्त हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है प्राची और निशित कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, केवल और केवल हार होती है, जान माल का नुकसान होता है, बिजनेस डिस्टर्ब्ड होता है, आपने देखा ट्रेड डिस्टर्ब्ड हो गया। आपका दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अमित, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होके माल सी पर ऑलरेडी आ जाता है वो तो उसी रेट पर आता है, पर ये एक निरंतर प्रक्रिया है अमित, ये माल आता रहता है, यूज होता रहता है, आता रहता है, पर जो फ्रेश ऑर्डर्स जब वो डालेंगे इस रेट पर, तो वो उनको फिर इसी रेट पर डालने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक दफे सामान मंगा लिया तो हमारा कई महीनों तक चल रहा है। हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, मैं बता दूं, विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है, पेद्दूर में है, परंतु जो नए ऑर्डर्स आप डालते हैं, और ये तो आपको जैसे मैंने बताया निरंतर प्रक्रिया, सामान खर्च होता रहता है, यूज होता रहता है, आता रहता है, तो नए ऑर्डर्स तो आपको नए रेट पर ही डालने पड़ेंगे। तो कुछ दिन तक आपकी बात ठीक है, कुछ दिन तक हम पुराने रेट्स का फायदा उठा जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पाइपलाइन में है, पर जो नया आएगा हमें तो वो तो अब नए रेट्स पर ही आएगा, ये तो हमें मानना पड़ेगा।
बिल्कुल, मुंबई से हमारे साथ सुनील जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आप कृपया अपना सवाल पूछिए।
पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार।
हाँ, शरद कोहली जी से मेरा प्रश्न है। कोहली जी
जी,
मेरी उम्र अभी 58 साल हो गई है
जी,
और कुछ ना पेंशन है ना कुछ है
जी।
अब मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा बच्चे लोग काम करें, तो मैं सोचा कहीं SIP वैसा भी खोल दूं जो बाकी का समय बचा है। जी क्या सही रहेगा जरा बताएं कुछ।
सुनील जी, पहले तो हम प्रार्थना करेंगे आपको, आपको ईश्वर लंबी आयु दे। आप 58 के हो गए, अभी तो हम कहेंगे 58 और अभी आगे बाकी है। और जहां तक बात है एसआईपी की, देखिए एसआईपी फिर थोड़े लंबे वक्त के लिए होता है, क्योंकि आपका जो बहुत फिलोसॉफिकल आपने अंदाज में अपने आप को, अपनी उम्र के दराज को बताया, तो एसआईपी फिर आपको कम से कम 5-10 साल का रखना पड़ेगा। मैं आपको सलाह दूंगा सुनील जी कि आप पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं, जिसमें MIS है और रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स हैं, आप उनको देखें। PPF आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑलरेडी कर रखा होगा, हालांकि वो भी 15 साल का होता है, तो पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखें। हाँ, कर सकते हैं आप SIP, अगर आप 5 साल का 10 साल का नजरिया रख सकते हैं ऐसे में तो आप जरूर करिए। पर आपने बहुत थोड़ा सा निराश होकर कहा आपको पेंशन वेंशन भी नहीं है और ये भी नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कुछ बचत होगी, जो आपने ता उम्र नौकरी करी है तो उसमें से जो बचत है उसको एक साथ ना लगाएं। अगर SIP में लगा भी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा 3-4 SIP संडे को, सुनील जी मैं बताना चाहूंगा, डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है खाली म्यूचुअल फंड्स पर, तो यहां पर म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उनसे आप सलाह लेके कुछ SIP शुरू कर सकते हैं। पर नजरिया सुनील जी हमने देखा है कि वही कमाता है प्राची और निशित जो कम से कम 10 साल का नजरिया रख के चले, क्योंकि SIP आप देखिए जैसे ऐसा समय आया हुआ है जब मार्केट्स में लगाया जाता है पैसा, तो ऐसे में तो फिर SIP वाले थोड़े से हताश हो जाते हैं कि हमारी NAV नीचे चली गई है, हमारी मेहनत की कमाई है। पर जो लंबा नजरिया रख के चलता है, बल्कि ये और क्यों SIP की एक खूबसूरती है कि आप नीचे के लेवल पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको, आपको अगर लंबा नजरिया रखना चाहते हैं मित्तल जी तो जरूर रखिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ढेर सारी इनकम आए जहां से भी आए। जी,
नेक्स्ट कॉलर इज जयपाल फ्रॉम हरियाणा। जयपाल जी
नमस्ते, मार्केट टीम, विशेष रूप से कोहली सर को
नमस्कार।
सर मेरा प्रश्न यही है कि इस समय SIP और PL Life फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सी स्कीम बढ़िया रहेगी?
देखिए जयपाल जी, यहाँ पर हम स्कीम का नाम नहीं लेते, पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी आपसे पहले सुनील मित्तल साहब एक कॉलर थे, उनको हम यही बता रहे थे कि संडे को, कल आप दोबारा कॉल करिएगा, वहां पर खाली खाली म्यूचुअल फंड्स के लिए एक कार्यक्रम होता है, तो उसमें आप SIP भी पूछ सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और मुझे नहीं पता आप शायद म्यूचुअल, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में से डिस्टर्ब हो रही थी, तो शायद आप म्यूचुअल फंड्स का ही पूछना चाहते हैं, SIP का पूछना चाहते हैं। पर SIP बहुत अच्छा है जयपाल जी, पर उसमें लंबे वक्त के लिए रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग निश्चित और प्राची ये गलती कर रहे हैं, SIP करते हैं 2-3 साल बाद उनको फिर थोड़ा सा, क्योंकि पैसा तो हर महीने कटता है और पैसे की जरूरत किसको नहीं है, तो आपको जब आपका बजट थोड़ा स्क्वीज होता है, घर का कोई ऐसा सामान लेना है, तो यार ये SIP कटे जा रही है, कुछ मिल तो रहा नहीं इसमें से, तो SIP में उसी ने कमाया, उसी ने वेल्थ बिल्ड करी है जो लंबे वक्त के लिए रहा है। तो जयपाल जी ये ध्यान रखिएगा, बाकी कल जरूर फोन करिएगा, आपको नाम आप पूछिएगा जो एक्सपर्ट आएंगे उनसे, आप कौन कौन से SIP। अब मैं भी बता सकता हूं, पर मैं यू नो आई वांट टू होल्ड माय सेल्फ बैक, क्योंकि जब हम एक डेडिकेटेड कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए, तो मुझे लगता है हमें खाली इसी पर ही प्रश्न होते हैं, तो वो और अच्छा लगता है।
जी, मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि सेंसेक्स और निफ्टी में हर 3 महीना में कुछ ट्रिक्स चेंज होते हैं
जी,
कभी कभी ये शेयर रहता है सेंसेक्स में, कभी नहीं रहता है
जी,
इसका रीजन क्या होता है और ये चेंज किसकी वजह से होता है, ये एक सवाल है। और दूसरा, जो अभी ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चालू है
जी,
उसके वजह से ये इंडिया में PNG ये जो LPG और ये जो 2-3 टाइप के गैस है, तो उसका भारत की दृष्टि से हम कितने आत्मनिर्भर है और हमारे सभी लोगों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है क्या, नहीं हो सकता?
देखिए रत्नाकर जी, आपने निफ्टी में पूछा कि शेयर निफ्टी 50 शेयरों को मिला के बनती है, उसका नाम ही निफ्टी इसलिए है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ऑफ 50 शेयर्स, शॉर्ट में हम निफ्टी कह देते हैं। बिल्कुल, निफ्टी में शेयर अंदर बाहर होते रहते हैं, उसका जो क्राइटेरिया होता है रत्नाकर जी वो वॉल्यूम होता है। जब किसी शेयर में 50 शेयरों में मान लीजिए 51वां 52वां शेयर है, उसमें वॉल्यूम एकदम बढ़ जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट लोएस्ट वॉल्यूम शेयर होता है उसको बाहर करके उसको कर दिया जाता है। तो वॉल्यूम एक क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है कि वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या होता है, शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो निफ्टी को ऐसे शेयर्स एक्सपोज किए जाते हैं जिनकी वॉल्यूम ज्यादा हो। आपका दूसरा सवाल LPG के साथ, अगर आप देखिए सरकार की तरफ से कई बार ये बयान आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली, हमारे यहां कोई कमी नहीं है, फिलहाल हम आत्मनिर्भर तो ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं, ये बात तो सही है, भारत में भी प्रोडक्शन बढ़ रही है। अभी भी दो शिप्स आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से क्लियर हुए। ये बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आने थे, कुछ लोग बीच में जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं ऐसी हालात का फायदा उठा के, आपदा में अवसर, एक अलग किस्म का आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं, उनकी वजह से हुआ है रत्नाकर जी। कोई शॉर्टेज नहीं है, आई थिंक दिस विल सेटल डाउन। इस पर राज्य सरकारें भी अब तो बड़ा पुख्ता एक्शन ले रही है और क्रैकडाउन कर रहे हैं, पुलिस भी डिप्लॉय की गई है डिपोज पर, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर, जिससे कि लोगों को लाइनों में ना लगना पाए। आई थिंक पीपल शुड मेंटेन अ बिट ऑफ काम, ऐसी कोई बात है नहीं। लोग थोड़ा पैनिक में आके, जिसके पास एक सिलेंडर है वो कहता है एक और भर लो, कल को मिलेगा नहीं मिलेगा, और बीच में कुछ लोगों ने फायदा तो उठाया, इस बात से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उनके ऊपर सरकार एक्शन ले रही है।
नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई। रवि जी
नमस्ते।
नमस्कार
शरद जी को भी नमस्कार।
नमस्कार रवि जी।
सर आज अभी सर्विस सेक्टर में रिकॉर्ड ब्रेक एक्सपोर्ट का एक न्यूज सुना
जी।
AI का जो नया सिनेरियो है
जी,
उसके परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल है कि हमारे एक्सपोर्ट्स और ब्रेन ड्रेन, इन दोनों में कोई पैराडाइम शिफ्ट की आप संभावना देखते हैं क्या?
देखिए रवि जी, वो IT कंपनीज जो अपने आप को AI के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग नहीं कर रही हैं, तो एंट्रोपिक AI जो अमेरिका में जिसका बहुत चर्चा में रहा कि भारतीय कंपनीज का बहुत सारा बिजनेस वो ले जाएंगे। देखिए जो कंपनीज रूटीन काम करती है, कोडिंग है, बैकएंड HR सर्विसेज है, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज है, इस टाइप की जो सर्विसेज करती हैं, उनको थोड़ा सा आगे चैलेंज रहेगा। पर इसमें आयरॉनिकल क्या है, मैं प्राची और निशित को भी बताना चाहूंगा, रवि जी आप भी सुनिए, कि जो इस AI के जन्मदाता थे, IT से ही निकल के आता है ना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशन टूल्स हैं, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, वो सारी IT से निकल आता। आज जन्मदाता को ही वो खतरा बन गया है, मतलब जो उनका उनके जो, तो ये बहुत आयरॉनिकल है। तो मुझे लग रहा है कि IT कंपनी इसके लिए तैयार हैं, और आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए हो सकता है ऐसा महसूस हो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत का वर्चस्व इसमें बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। टेम्परेली थोड़ा सा एक झटका लग सकता है शुरू में, पर मुझे नहीं लगता बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आप AI को भी कर सकते हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अमेरिकन एक जर्नल में आज, जो ये कह रहा है कि AI जो है वो मैनकाइंड के लिए भी खतरा बन सकता है अगर उसको अनकंट्रोल्ड या अनरेगुलेटेड। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। मुझे IT कंपनीज में इतना इमीडिएट कोई खतरा नहीं नजर आता। हाँ, वो कंपनीज जो अपने आप को अपस्किल और रीस्किल नहीं कर रही, उनको शायद थोड़ा आगे जाके खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
सरकार ने कहा है कि देश के सेवा निर्यात में लगातार मजबूत वृद्धि दर्ज की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल माह से जनवरी के दौरान निर्यात 348 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा निर्यात का योगदान 10% था। ये अर्थव्यवस्था में सेवा निर्यात के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है। सरकार का लक्ष्य सन 2047 तक भारत को सेवा व्यापार में 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ एक अग्रणी देश बनाना है। इससे विकास, रोजगार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। श्रोताओं, जयपुर से हमारे साथ इसी सिलसिले में जितेंद्र जुट रहे हैं। जितेंद्र जी, अपना कृपया सवाल पूछिए।
हाँ, धन्यवाद सर। अभी किसी श्रोता ने IT के बारे में पूछा था, तो मेरा उसी से सवाल था, तो लगभग हमको 70% आपके उत्तर से ही हमको मेरा उत्तर मिल गया। तो मैं अब प्रश्न बदल रहा हूँ। तो ये मैं पूछा था कि पिछले बार आपने किसी कोई श्रोता पूछा था, तो आपने बोला था कि अगर आप प्रॉफिट में हैं इस समय तो बेच के निकलिए, पैसे की जरूरत है, और नहीं है तो नुकसान में बेचना अच्छी बात नहीं है
जी।
तो और जो बेचना नहीं चाहता है तो क्या अभी खरीदने का समय है एकदम बिल्कुल, जिसमें एड प्लस मतलब माइनस हो गया उसको एड करते जाए अच्छे शेयर में?
जितेंद्र देखिए, ये सवाल भी आपसे पहले शुरू के कार्यक्रम के शुरू में किसी ने पूछा था। बिल्कुल ये समय होता है बार्गेन हंटिंग का, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं दोहरा देता हूं जितेंद्र, के बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स, क्योंकि ये जो गिरावट आई है ये युद्ध के कारण है, ये क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण है, ये रुपया गिरने के कारण है, FIIs का लगातार पैसा निकलने के कारण है। तो बहुत सारी कंपनीज के जो शेयर्स है ना, जो वैसे महंगे मिलते हैं, इस दौरान में सस्ते हो जाते हैं। कारण तो अच्छे नहीं है, पर मौका अच्छा है ये बार्गेन हंट्स का। पर जितेंद्र, उसमें ध्यान ये रखना है कि कंपनी की चॉइस एक हम लोग स्टॉक मार्केट में हम लोग टर्म यूज करते हैं, आपने जरूर सुना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम पीई देखते हैं, बुक वैल्यू देखते हैं, EBITDA देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि कंपनी का शेयर हाई डीएमए कहां, थोड़े टेक्निकल्स भी देखते हैं, 200 डेमा कहां है, 50 डेमा कहां है। तो ये सब चीजें देख के आपको, अगर आपकी कंपनी की चॉइस अच्छी है, जितेंद्र मैंने आपको याद होगा एक दफे जिक्र किया था, जैसे जैसे लड़का लड़की पसंद करते हैं, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है वगैरह, तो इस तरीके से अगर आप कंपनी की चॉइस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वक्त है वाकई में जितेंद्र ये शेयर पर लॉन्ग टर्म के लिए लेने का, और थोड़ा थोड़ा करके लगाइएगा, एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए।
अगले कॉलर हैं टिंकू बिहार से। टिंकू
नमस्ते सर।
नमस्ते
सर, मैं किसी बैंक में बिहार में गए थे ग्रामीण में
जी,
उसके मैं सोचे लड़के के लिए, मेरे 10 साल का लड़का है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चाय पॉलिसी ऐसा है, तो बताया कि ये 30,000 एक बार मंथली साल में जमा करना है, और फिर SIP 2500 का महीना आपको अकाउंट में अगले साल से कटेंगे। और मैं एक और बैंक में गए थे SBI बैंक में, उसमें मेरा अकाउंट भी है, उससे पूछे कि मेरे के लिए कोई शेयर के बारे में जानकारी चाहिए जो उसमें लगाने के लिए पैसे कुछ मंथली या 500 या कुछ महीने का लगाए
जी।
तो बोलता है कि, और म्यूचुअल फंड के लिए भी जानकारी में चाहे तो उसको होता है 2000 के महीने करेंगे आप म्यूचुअल फंड तब अकाउंट से कटेगा, नहीं तो 500 के करिएगा तो 500 के लिए आपको बड़े मोबाइल चाहिए उस पर मैं जानकारी देंगे, अब चूज कीजिएगा किस पे लगाना है क्या करना है, यही जानकारी हमें चाहिए सर।
जी टिंकू जी देखिए, अभी आप वित्त मंत्री महोदया का, मैं प्राची और निशित एक बयान मैंने पीछे सुना था, और वो मैं बयान को बहुत ही अभी नजदीक की बात है, उन्होंने कहा था कि बैंक जो है वो अपने काम पर ध्यान दें, बैंक अपना जो उनका मेन बैंकिंग एक्टिविटी है, डिपॉजिट है, लोन देना है, बैंक आजकल दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इंश्योरेंस बेचना है, म्यूचुअल फंड बेचना है। तो आप, मुझे नहीं पता टिंकू जी आप कौन से बैंक के पास गए थे और उन्होंने क्यों कहा वो लोग अपनी प्रोडक्ट बेच, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके इर्द गिर्द, मुझे नहीं पता आप बिहार में किस जगह हैं, पर आपके इर्द गिर्द जो भी कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो उनसे आप सलाह लीजिए, मार्केट मंत्रा सुनते रहिए, आपको हम अक्सर मार्केट मंत्रा पे नहीं सुनते हैं, आप जरा ज्यादा आया करिए, और संडे को म्यूचुअल फंड का टिंकू जी एक कार्यक्रम आता है उसको भी सुने। तो बिल्कुल ये सलाह तो ठीक है कि 500 रुपए या 2000 रुपए हर महीना कट कट के जमा होता रहे, ये सलाह तो बिल्कुल दुरुस्त है, पर कहां डालना है ये बहुत अहम बात है। तो अगर आप इस पैसे को हर महीने अफोर्ड कर सकते हैं तो लंबे वक्त के लिए बड़ा अच्छा आपका एक कॉर्पस, आपका एक वेल्थ बन जाएगी, आपकी एक पूंजी बन जाएगी। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा सा और मैं एक जनरल बात बोल दूं प्राची और निशित की आज्ञा से, हमारे दोनों माननीय एंकर से, कि पैसा अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे तो पहले आपको पैसे के लिए टिंकू जी काम करना चाहिए, जल्दबाजी में मत करिए, लगाइए एक दो महीने, रिसर्च करिए, लोगों से मिलिए, और एक दो बैंक जाइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ढूंढिए, मार्केट मंत्रा सुनिए, संडे वाला भी सुनिए, और उसमें सुन के आपको ये पता लगेगा कि कहां ठीक जगह है पैसा लगाने की। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं टिंकू जी कि आप उसकी बातों में नहीं आए, मुझे नहीं पता उन्होंने शायद ठीक ही बताया, क्योंकि हो सकता है इनकी जानकारी पूरी ना दे रहे हो अभी रेडियो पर बहुत सोच समझ के लगाइएगा, और थोड़ा मार्केट मंत्रा के एक दो और एपिसोड्स आप सुनिए, हम लोगों को जो यहाँ एक्सपर्ट्स आते हैं उनको सुनिए, उसके बाद आप पैसा लगाइएगा, जल्दी में मत लगाइए टिंकू जी। अभी तो मैं यही कह सकता हूं, आप इतनी दूर बैठे हैं, मुझे ये भी नहीं पता आप बिहार में किस जगह से, मैं आपको नजदीक का कोई शहर बताता जहां आप जाके लगा सकते थे, पटना से कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम, पटना में मेरी जानकारी में है लोग जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं, पर बहुत अच्छा करा टिंकू जी पूछ के निवेश कर रहे हैं, अब तक तो हो गया होता जी।
जी शरद, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली से दिनेश हमें कॉल कर रहे हैं। दिनेश जी कृपया अपना सवाल पूछिए।
हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम।
गुड इवनिंग।
हाँ जी, नमस्कार कोहली जी।
नमस्कार दिनेश जी।
हाँ सर जी, कोहली जी ऐसा है, लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, हमारे पास 7 लाख। हेलो
जी, फिर से बोलिए।
30 साल पहले मेरे फादर ने अप्लाई किए थे, उस वैल्यू अभी 7 लाख, तो वो खाली हमारे पास फोलियो नंबर है, तो प्लीज ये जो पीछे डेट निकाली थी ना 6 जनवरी तक थी कुछ,
जी जी जी,
तो मतलब 6 महीने की
जी,
तो वो डेट और उसके कोई नोटिफिकेशन निकालना है तो प्लीज थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा।
देखिए मैं पहले तो हमारे दोनों माननीय एंकर्स की इजाजत से एक सभी श्रोताओं को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जब भी कॉल करते हैं तो ऐसी जगह देख लीजिए फोन पे नेटवर्क है कि नहीं, क्योंकि आप कई बार, अब जैसे आपका दिनेश जी का नेटवर्क कट रहा था, पर कुछ कुछ हम समझ पाए, इनके पास कुछ शेयर्स हैं, खाली फोलियो नंबर है, तो फोलियो नंबर से दिनेश जी पता लग जाता है, अगर आपको कंपनी का नाम पता है तो आप कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाएं, उस रजिस्ट्रार को आप वो ड्यू डिलीजेंस करेंगे, आपसे केवाईसी लेंगे, आपके फादर के नाम के हैं उनका उनका आधार कार्ड, या अगर वो दुनिया में नहीं है तो उसके पेपर्स, अगर दुनिया में है तो और वो खुद नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो आप उनको उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह देंगे, आपको वो फिर शेयर्स का एक सर्टिफिकेट देंगे, फिर आपको इनको डीमैट कराने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस है, चिंता मत करिए, जो डेट निकल गई है आपके अगर शेयर्स हैं तो वो रजिस्ट्रार आपकी अवश्य मदद करेगा, जितना मैं समझ पाया उससे तो मैं यही उत्तर दे सकता हूँ जी।
नेक्स्ट कॉलर इज योगेश फ्रॉम दिल्ली। योगेश
जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मार्केट में युद्ध चल रहा है और मार्केट टूटती जा रही है, तो जैसे हमारे को निवेश करना है पैसा म्यूचुअल फंड में लमसम, तो ऐसे भी तो हमारी चल रही है एसआईपी के साथ में जो लमसम डालना है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग जब भी हम पूछते हैं तो लोग बोलते हैं टाइम मत करो, टाइम मत करो, पर वैल्यूएशन के नाम पे हम लोग कैसे ये डिसीजन लें कि अभी वैल्यूएशन सही है कि नहीं?
योगेश पहली बात तो जी 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 मैं समझ गया योगेश, पहली बात तो युद्ध मार्केट में नहीं चल रहा, युद्ध तो खाड़ी में चल रहा है, बाकी हाँ मार्केट में जब गिरती है तो युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, जिस प्रकार से सेल आती है, बिल्कुल कंपनी की वैल्यूएशन निकालने का तरीका होता है योगेश, उसमें आप कंपनी का जो पिछला 3-4 साल का परफॉर्मेंस है उस शेयर प्राइस को आप सामने रखिए, फिर कंपनी की बैलेंस शीट, अभी मैं आपसे पहले किसी श्रोता से बात कर रहा था, फंडामेंटल एनालिसिस हम उसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी रेशियोज होती हैं, उसकी डेट इक्विटी रेशियो है, पीई है, बुक वैल्यू है, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टॉप लाइन कैसी है वो भी देखनी होती है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के और एक साथ योगेश मत डालिए। आपने कहा कि लमसम डालना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, मार्केट आपको बहुत मौके दे रही है, देखिए ना रोज नए नए लेवल्स, नीचे के ऊपर के नहीं, नीचे के लेवल्स छोड़ रही है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। आप सोचिए किसी ने 24,000 पे डाल दिया होता, मार्केट अब 23,000 के आसपास आ गई है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आप अलग अलग लेवल्स पे एंट्री करेंगे। तो योगेश इसके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस पे रिसर्च करिए, मार्केट मंत्रा सुनते रहिए, यहां भी हम बीच बीच में बताते रहते हैं जब जब जैसे जैसे समय मिलता है तो।
बिल्कुल
right, and in some other stories, the domestic benchmark indices registered the steepest weekly decline in nearly 4 years amid weak global cues and rising crude oil prices. The Sensex at the BSE plunged 4,355 points or 5.5% during the week to close at 74,564 on Friday, and the Nifty at the National Stock Exchange declined 1,299 points or 5.3% to end at 23,151. And in the broader market, the BSE Mid-Cap Index declined 4.5% and the BSE Small-Cap Index slump 3.6%.
श्रोताओं लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, यहाँ से विद्यानाथ जुड़ रहे हैं। विद्यानाथ जी कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, मैं वैद्यनाथ महाराष्ट्र से। सर ये वॉर सिचुएशन में क्रूड ऑयल की क्या स्थिति रहेगी, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखिए क्रूड ऑयल के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिक्स होते हैं, इसमें भारत तो अपना 87% क्रूड बाहर से मंगाता है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि क्रूड ऑयल फॉरवर्ड मार्केट में भी ट्रेड होता है, एमसीएक्स कमोडिटी में, तो जब तक युद्ध है तब तक थोड़े से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहेंगे, जैसे ही शांति की खबर आएगी तो क्रूड ऑयल की कीमतें भी शांत हो जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।
एंड इन द यूएस मार्केट्स व्हिच एंडेड लोअर यस्टरडे कैपिंग अ वीक इन व्हिच एरेटिक क्रूड ऑयल प्राइसेस अफेक्टेड इक्विटीज, ऑल थ्री मेजर यूएस स्टॉक इंडिसेस लॉग डेली एंड वीकली डिक्लाइंस। द डाउ जोन्स एवरेज फेल 119 पॉइंट्स और 0.3% टू 46,558। And in oil, the global crude oil prices jumped last week at the Strait of Hormuz, remained closed amid geopolitical tensions in the Middle East. Brent crude oil prices jumped 11.3% during the week to close at $103 per barrel on Friday, and the US crude surged 8%. Goldman Sachs predicted on Friday that Brent oil would average more than $100 a barrel in March and $85 in April. And global gold prices declined for the second consecutive week, pressured by a stronger dollar and inflation worries driven by Iran war, which weighed on rate cut expectations. Spot gold prices in the global markets fell nearly 2% to close at $5,061 per ounce.
शरद जी, तमाम श्रोताओं की तरफ से, मेरे और निशित की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू सो
वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर, द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अश्योर्स अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई across the country, says two Indian flag vessels have crossed the Strait of Hormuz today. Service exports crossed $348 billion during April-January period of the current fiscal, and domestic benchmark indices registered steepest weekly fall in nearly 4 years. Sensex and Nifty slump over 5%. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।